أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سبق نمبر 7، جس کا ٹائٹل ہے عینی اور ذہنی. ہم نے پچھلے سبق میں، چھٹے درس میں، بیان کیا کہ وجود موضوع ہے فلسفے کا، اور وجود کے گرد کئی قسم کے مسائل گھومتے ہیں. وہاں پر ہم نے دوسرے قسم کے مسائل میں وجود کی تقسیمات کو بیان کیا کہ وجود مختلف جہتوں سے مختلف قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. یہاں پر اس سبق میں ہم ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم کو ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں بحث کیا جائے گا. وہ تقسیم ہے وجود کی تقسیم عینی اور ذہنی کی طرف. وجود عینی بھی ہوتا ہے، یعنی خارجی ہوتا ہے، یعنی وہی خارجی وجود جو انسان کے ذہن سے بالکل ہی جدا اور مستقل ہے. جیسے آپ باہر دیکھ رہے تھے، سارے پہاڑ اور دریا اور صحرا، اور یہ سب ہمارے ذہن سے باہر ہے، ہمارے ذہن سے بالکل جدا ہے، لیکن ہم انہیں تصور کرتے ہیں، ہم ان سے ایک مفہوم بناتے ہیں. وہ مفہوم بن کر ایک ذہن میں آتا ہے. جب وہ مفہوم اسی پہاڑ کا، اسی صحرا کا، اسی دریا کا ہمارے ذہن میں آ گیا، تو اس کا، اسی پہاڑ کا ایک وجود ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، جسے کہا جاتا ہے وجود ذہنی. یعنی ایک تو پہاڑ باہر موجود ہے، اسے کہیں گے وجود خارجی. اسی پہاڑ کو جب انسان دیکھتا ہے، اسے ایک تصویر بناتا ہے، اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے، تو اس تصویر، اس پہاڑ کی اس تصویر کو کہا جاتا ہے وجود ذہنی. تو جب ہم ان کا تصور کرتے، ان چیزوں کا جو باہر موجود ہے ان کو تصور کرتے، تو در حقیقت ہم انہیں اپنے ذہن میں وجود میں لاتے. تو ذہن میں جو پیدا ہونے والی چیز ہے اسے کہا جاتا ہے وجود ذہنی. اچھا، یہاں پر پھر دو سوال مطرح ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اشیاء کی وہ تصویر جو ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے، انہیں ان اشیاء کا وجود کیوں سمجھا جاتا ہے، کیوں اسے وجود کا وجود کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں جو تصویریں بن رہی ہیں آپ اسے وجود کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح دیوار پہ بھی آدمی تصویریں کھینچتا ہے. اب تو ماشاءاللہ سے کیمرے سے بھی آدمی تصویریں کھینچتا ہے، اور دوسری مختلف چیزوں سے بھی آدمی تصویر کھینچ سکتا ہے. تو کیا ان چیزوں کا، ان تصاویر کا جو دیوار پہ کھینچی گئی ہے، وہ تصاویر جو کیمرے نے کیپچر کیا ہے، ان سب تصاویر کو بھی کیا وجود کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وجود ذہنی اور درحقیقت صرف انسان سے ہی مربوط ہے، اور اس کی نفسیاتی مسائل سے تعلق رکھتا ہے. تو کیا بہتر ہوتا کہ اس کو علم نفسیات میں ذکر کیا جاتا، بجائے اس کے اس کو آپ فلسفے میں ذکر کریں؟ ان دونوں کے سوالوں کے جواب میں ہم کہیں گے کہ شے کا جو ذہنی تصور ہوتا ہے، ذہنی تصور جب انسان کے اندر، انسان کے نفس میں وجود میں آتا ہے، تو انسان کو معرفت اور آگاہی دیتا ہے، انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ خود وجود ذہنی انسان کے لیے علم بنتا ہے. لیکن کیا ہم دیوار کو کہہ سکتے کہ جب دیوار میں ہم نے کوئی تصویر بنا لی، تو کیا کہہ سکتے کہ دیوار عالم بن گیا؟ یہ کیمرے میں ماشاءاللہ سے اتنی ساری تصویر اس میں آ جاتی ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں علامہ، کیمرے کو علامہ کہہ دوں، علامہ کیمرہ؟ نا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا آپ سے کہ آپ کیمرے کو عالم کہتے ہوئے گزر جائے یا دیوار کو عالم کہہ دیں. نا، انسان کے ذہن میں اگر وہ تصاویر آتی ہے، تو انسان ان تصاویر کے آنے سے انسان عالم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر درک و فہم و معرفت حاصل ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گیا پہلا سوال کا جواب. دوسرے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہمارے ذہن میں خارجی اشیاء کی ماہیت کا ایک طرح سے وجود میں آنا ہے، اور یہی اگرچہ، یعنی ایک طرح سے انسان کے ذہن میں وہ خارجی اشیاء کی ماہیت ذہن میں وجود میں آ جاتی ہے، تو अगर दिक्कत की जाए तो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि एक ही मसला दो एतबार से दो फन से ताल्लुक़ रख सकता है, जिस के अबू अली सीना ने अपनी किताब शिफा में, शिफा के इलाहियात में इब्तिदा में इस मसले की तरफ इशारा किया उन्होंने कि बाज़ औक़ात एक ही मसले दो एतबार से दो फन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगरचे एक लिहाज से ज़हनी तस्वीरें हैं, इस लिहाज से इसका ताल्लुक़ नफ्सियात से, इंसानी नफ्सियात से मरबूत है, लेकिन दूसरी लिहाज से इससे इंसान की मारिफत में इजाफा हो रहा है। मारिफत नफ्स है इल्म ही, तो उस वजह से कि इंसान के जहन में एक नया वजूद के आने के बाद इंसान की मारिफत में इजाफा हो रहा है, और ये वजूद वाकन हैसियत रखता है, वाकन हयात का बायस है, तो हम इस वजूद को तकसीम कर सकते हैं वजूद खारजी और ऐनी की तरफ, और इसमें कोई मुनाफात नहीं, कोई टकराव नहीं है उस नफ्सियाती मसाइल के साथ। वहाँ पर दूसरी जहत से बहस किया जाता है, यहाँ पर दूसरी जहत से बहस किया जाता है, यहाँ पर इस जहत से कि वजूद जहनी इंसान की मारिफत को बढ़ाती है, और ये मारिफत को बढ़ाना कतअन मुख्तलिफ है उस वजूद खारजी से, जिस वजूद खारजी को देखने के बाद इंसान की मारिफत में इजाफा नहीं होता, जब तक कि उस वजूद खारजी के देखने से इंसान के जहन में उसकी तस्वीर खींची ना जाए और इंसान के जहन में उसकी तस्वीर आ ना जाए। ये तो हो गया बहस वजूद जहनी और वजूद खारजी के बारे में। इससे रिलेटेड एक बहुत अहम बहस जो इस हवाले से की जाती है वो है बहस हकीकत और ख़ता की। हकीकत और ख़ता की बहस यानी क्या? हमने यहाँ तक बहस की वजूद ज़हनी और ख़ारिजी के बारे में। अच्छा, अगर मैंने जिस पहाड़ को देखा है और उसकी तस्वीर मेरे जहन में आई है, बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ हो ये तस्वीर जो बाहर है, यानी ये वही चीज़ को दिखलाए जो बाहर है, तो कहें कि ये मेरी तस्वीर हकीकत है, पहाड़ को दिखा रही है, यानी ये मेरी तस्वीर मुताबिक है बाहर के। लेकिन अगर बाहर तो पहाड़ है लेकिन मेरे जहन में टेबल आ रहा है, बाहर तो पहाड़ है लेकिन मेरे जहन में कुर्सी आ रही है, बाहर तो पहाड़ है लेकिन मेरे जहन में किताब आ रही, कोई भी दूसरी तस्वीर आए मेरे जहन में जो बाहर से मुताबिकत ना रखे, तो उस सूरत में मैं कहूँगा कि मेरे जहन ने ख़ता कर लिया है। ये हो गया बहस वजूद हकीकत और ख़ता के बारे में। ये जहनी वजूद के जो अपने मसले पर हमने इदराकात में हकीकत नुमाई के बारे में कि जो हमने दर्क किया है, क्या वो वाकई हकीकत रखता है, क्या हमने हकीकत दर्क किया है और क्या ना हमने ख़ता किया, गलती की है। क्योंकि ये मसला तो कदीम से चलता हुआ आ रहा है फ़लासफे के दरमियान कि जो हम अशिया को बाहर देखते हैं हवास के ज़रिए, अक्ल के ज़रिए जो कुछ इदराक करते हैं, क्या वो वाक़े और नफ्सुल अम्र से मुताबिकत रखता भी है या नहीं। नफ्सुल अम्र यानी वही मुताबिकत वाला जो ज़र्फ़ है उससे कहते हैं नफ्सुल अम्र। तो इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हम बाज़ मसाइल को तो जो हिस हो या अक्ली हो उनको दर्क करते, और हम ये भी यकीन रखते हैं कि ये मुताबिक है वाकई के साथ, और बाज़ मसाइल में हम देखते हैं कि नहीं, हम ख़ता करते, बहुत सारी ऐसी हिस है जो हमारे अंदर जो ख़ता करती, खुद अक्ल भी बसा अवकात ख़ता करती, हम इस्तेदलालों में देखते हैं कि हम ख़ता के तो चार हो जाते हैं। अगर जब मंतिक में सही तरीके से इस्तेदलाल सीखते हैं इसके बावजूद भी आकर यहाँ पर हम ख़ता कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम बास ख़ताओं की वजह से कुल्लन हकीकत को मना कर दे कि नहीं, हकीकत तो मौजूद नहीं है, हकीकत की तरफ हम की रसाई नहीं है, इसको हम रोक देना इस तरह नहीं है, हकीकत को हम पहचान सकते, बाज़ उमूर में बाज़ चीज़ों में हम यकीनन ख़ता भी करते। लेकिन इसके मुकाबले में ऐसा ग्रुप जो हमने पिछली तरफ पहले दर्स में जिसकी तरफ आपको निशानदेही की थी, सुकरात के ज़माने में एक ऐसा ग्रुप था सुफस्ताई करके, कि जो बिल्कुल ही मुनकर वाकियत था, को कह रहा था कि कोई भी वाकियत खारिज में मौजूद नहीं है। जो शख्स, और ये कहते कि जो शख्स जो कुछ महसूस करे और जिस तरह फिक्र करे उसके लिए वही हकीकत है। तो मेयार क्या बना दिया उन्होंने, इंसान, इंसान मेयार है। जो शख्स जिस तरह चाहे सोचे समझे फिक्र करे और अपने आप के लिए हकीकत को मुशख्खस करे। तो एक तरह से सुफस्ताई सिरे से ही वाकियत के मुनकर हो गए, और जब वाकियत का इनकार कर दिया तो फिर पता था मुताबिकत की भी बारी नहीं आएगी। मुताबिकत की बारी कब जब आएगी, जब उन्होंने पहले वाकियत को तो मान लिया हो, जब वाकियत ही को रद्द कर दिया तो फिर मुताबिकत बावाकियत, वाकियत के साथ मुताबिकत रखने की बात ही पेश नहीं होगी। ये तो ग्रुप था सुकरात और अफलातून और अरस्तू के मुकाबले में, इन्होंने उनके मुकाबले में अपनी बात की महत्ता की बयान की। इनके दो बड़े मशहूर फिलसुफ है, सुफस्ताई भी कहेंगे, फिलसुफ तो नहीं कहेंगे वो, दो बड़े मशहूर सुफस्ताई है, एक का नाम है प्रोटागोरस और दूसरे का नाम है गोर्गियास या जॉर्जियास। अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो इनको आप अभी बैठे बैठे नक़्द कर सकते हैं, और वो नक़्द क्या है कि खुद उनका ये जुमला कि खारिज में कोई भी वाकयात मौजूद नहीं है, उनसे हम ये सवाल करेंगे कि आपका खुद ये जुमला क्या वाकई है कि नहीं है, आप असल खुद, आप खुद वाकई है कि नहीं है। तो एक तरह से उनका जुमला ही उनको तोड़ रहा है, खुद उनका वजूद ही उनको तोड़ रहा है। तो दूसरी दलील जिक्र करने की अतः बारी तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप जो अरस्तु के बाद इस्कंदर, मकतब इस्कंदरी के दौरान वजूद में आया, वो ग्रुप था शक्का का, सिप्टिसी, जिसने वाकईयत को तो इनकार नहीं किया लेकिन ये जरूर कहा कि वाकईयत को हम पहचान नहीं सकते, वाकईयत से इंसानी इदराकात की मुताबिकत के मुनकर हो गए। उनका क्या कहना था कि अशिया के इदराक के सिलसिले में इंसान अपनी अंदरूनी हालात और बैरूनी माहौल के ज़ेर असर हर चीज़ को एक ख़ास जाविये से देखता है, यानी हर एक में अगर इख्तलाफ पाया जा रहा है तो वो उसके अंदरूनी हालात और बैरूनी ख़ास माहौल की वजह से, कि कोई चीज़ आपके नज़र, आपके शायद नज़दीक वो हकीकत और वाकईयत रखती हो और वही चीज़ मेरे लिए शायद वाकईयत न रखती हो। तो ये हमारे बिरूनी अंदरूनी हालात की वजह से, और ना ही कोई और दूसरा कोई वो नहीं है। तो दोनों ने, सुफस्ताइयों ने भी शक्काकों ने भी, अच्छा इनके दरमियान फ़र्क क्या हो गया सुफस्ताई और शक्का के दरमियान, सुफस्ताई ने सिरे से ही वाकईयत का इनकार कर दिया था, शक्काक ने वाकईयत को तो मान लिया लेकिन कहा मैं नहीं पहचान सकता हूँ, मैंने अपने अंदरूनी हालात और बिरूनी माहौल को देख कर एक चीज़ का वाकईयत पहचान लिया, सामने वाले आने, सामने वाले शख्स ने आकर अब उसके अपना अंदरूनी हालात है, उसके बिरूनी माहौल है, उसने उसको इनकार कर दिया। तो हर एक शख्स का इसमें भी इस शक्का के नज़दीक भी हर एक शख्स, हर एक इंसान अपने लिए मेयार है किसी भी चीज़ के वाकयात होने या ना होने के बारे में। इन दोनों ने, सुफस्ताइन और शक्काकिन ने, कशफ वाकयात और वाकई नमाई के सिलसिले में इल्म की कदर कीमत के मुनकिर हो गए। जब मैं वाकयत को पहचान नहीं सकता तो फिर कोई इल्म ही नहीं बचेगा। और यूरोप के अक्सर फलासफा शकाकियत की तरफ उनका रुझान रखते हैं, और जबकि बाज़ फलसफा तबालतर सुफस्ताई की तरफ उनका रुझान, जिसमें से एक बार्कली है जिन्होंने सिरे से ही वाकयत खारिजी का इनकार कर दिया था। लेकिन फलासफे इस्लामी ने, मुसलमान फलासफा ने इसका जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल किया, एक बुनियादी रास्ता है इनके इस मुश्किल का जवाब देने के लिए, और वो है हकीकत वजूद ज़हनी। अगर कोई शख्स वजूद ज़हनी को पहचान ले, उसको समझ ले, तो तो उसके लिए ये सुफस्ताई वाली मुश्किल, ये शकाक वाली मुश्किल हल हो जाएगी। वो कैसे कैसे मुश्किल हल होगी? वो ऐसे कि फ़लासफ़े इस्लामी ने इल्म इदराक की तारीफ कैसे की है? इल्म इदराक की तारीफ की है कि इदराक करने वाले में, इदराक होने वाली चीज़ एक किस्म के वजूद से इबारत है। यानी क्या? यानी जब इंसान कोई भी चीज़ को दर्क करता है, तो जिस चीज़ को इंसान ने दर्क किया होता है उसका एक वजूद इंसान के अंदर आ जाता है। जब उसका एक वजूद मेरे जहन में आ गया, तो अब जब वजूद मेरे जहन में आ गया तो यानी मैं उस चीज़ का आलिम हो गया हूँ। और अगर वो वजूद जो मेरे जहन में आया है मुताबिकत रखे वो वजूद जो खारिज में है, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा इल्म सही, हकीकी और वाकईयत। लेकिन अगर मेरा ये इल्म गलत हो, मेरे जहन में कोई और वजूद जहनी आया हो और खारिज में कोई और दूसरी चीज़ हो, यानी ये जो मेरे जहन में है वो खारिज को न दिखलाए, तो ये मेरा इल्म ख़ता हो जाएगा। फ़ारबी अबूरी अली सिन्हा ने, उनका भी यही नज़रिया था कि इदराक से मुराद इदराक करने वाले में इदराक होने वाले की हकीकत की तमसील है। उन्होंने ये बात कह तो दी, लेकिन अपने दावा पर कोई दलील पेश नहीं की। यहाँ तक कि मुल्ला सदरा ने इस हवाले से दलील पेश की और इस मतलब को साबित कर दिए। यहाँ तक सबक नंबर 7 भी ख़त्म हुआ। وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين